अरुणिमा ने साफ साफ पर मना कर दिया था कि वो आस्तिक से मिलने नहीं जाएगी। अरुणिमा का जवाब सुनकर ताईजी को बहुत दुख हुआ। अरुणिमा बेड पर आराम से बैठ जाती है और आकाश को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, ताईजी, अगर आप यहाँ मुझसे और मेरे बच्चे से मिलने आई हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ मिलने आई हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर मुझे ये रिक्वेस्ट करने आई हैं कि मैं आस्तिक से मिल लूँ तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ताईजी ने लगभग रोते हुए कहा, प्लीज अरुणिमा, वो तुम्हारे बिना पागल हो जाएगा, उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम बस एक बार उसकी मदद कर दो, वो दर्द में तड़प रहा है। ताईजी ने जब ये कहा तो उनकी बात सुनकर अरुणिमा गुस्से में ताईजी को देखकर कहती है, दर्द? वो दर्द सह रहे हैं? दर्द होता भी क्या है ये उन्हें पता भी है क्या? दर्द वो नहीं होता है ताईजी जो वो सह रहा है, दर्द वो होता जो मैंने सहा। ये इंसान बिना किसी की वजह के मुझे बेरहमी से मारा करता था। आप सोच भी नहीं सकती हैं, जब वो इंसान मॉन्स्टर बनता था तो मैं क्या महसूस किया करती थी। उसके मॉन्स्टर रूप को मैंने बर्दाश्त किया है ताईजी, लेकिन अब मैं और कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने भी तो मुझ पर हो रहे अत्याचारों को देखा था। एक औरत होकर आप मेरा दर्द नहीं समझ सकती हैं और यहाँ मुझे ये कहने आई हैं कि मैं उस इंसान की मदद करूँ? ये सब कहते हुए अरुणिमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरुणिमा ने जब उन सभी दर्दनाक दिनों को याद किया तो उसका दिल भरी हो गया था। ताईजी के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अरुणिमा रोते हुए ताईजी को देखकर कहती है, आपके बेटे ने बिना किसी कारण के एक साल तक मुझे ऐसी सजा दी है जिसका घाव सारी जिंदगी मेरी आत्मा पर रहेगा। उन्होंने मुझे उस जुर्म की सजा दी है जो मैंने कभी किया ही नहीं था। ताईजी ने सब कुछ सुना, अरुणिमा का हरेक इल्ज़ाम, उसकी हरेक बात। उन्हें भी इस बात का बुरा लग रहा था कि वो अरुणिमा से मदद मांगने आई थी, लेकिन आस्तिक की हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई थी। भले ही आस्तिक कितना ही मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने आस्तिक की परवरिश की है और अपनी परवरिश किए बच्चे को वो ऐसे तड़पते हुए कैसे देख सकती थी। इसीलिए एक आखिरी कोशिश वो अपनी तरफ से करना चाहती थी। वो अपने एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछती है और अरुणिमा के उस मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कहती है, अरुणिमा, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम गलत कह रही हो, तुम पूरी तरह से सही हो और एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुमने जो किया है वो कहीं से गलत नहीं है। अपने लिए आवाज़ उठाना और अपने हक के लिए लड़कर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। यहाँ तक कि जब तुम महल से चली गई थी तब मैं महल आई थी आस्तिक को ये समझाने के लिए कि उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी एक अलग अहमियत है, पर एक बार जब मैं उस महल से चली गई तो मैंने सोच लिया था कि मैं कभी वापस लौटकर नहीं आऊँगी। पर फिर भी अरुणिमा, मैं वापस आई क्योंकि मुझे आस्तिक के बारे में पता चला था। जब मैंने आस्तिक की हालत देखी तो मैं तुमसे मिलने को खुद को रोक नहीं पाई। मेरे अंदर की माँ अपने बेटे के लिए रो रही थी, दर्द महसूस कर रही थी। बस उसी दर्द को संभालने के लिए मेरे बेटे की मदद करो, उसे बचा लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अरुणिमा ने बात तो पूरी सुनी, लेकिन उसने जैसे ठान रखा था कि वो आस्तिक से नहीं मिलेगी और ना ही उससे कोई रिश्ता रखेगी। अरुणिमा ने अपने आंसू पोंछे और ताईजी से कहा, आप एक माँ हैं, ठीक है, मैं भी एक माँ हूँ। आपके बेटे ने मुझे चोट पहुँचाने से पहले कभी नहीं सोचा। क्या गारंटी है कि आपका पागल बेटा मेरे बच्चों को चोट नहीं पहुँचाएगा? अभी अभी आपने कहा ना, वो दिमागी तौर पर पागल हो चुका है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो इंसान मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? कोई भी समझदार इंसान ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। ताईजी असहाय महसूस कर रही थी, वो आस्तिक का दुख नहीं देख पा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अरुणिमा के लिए भी बुरा लग रहा था। ताईजी ने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं और अफसोस के साथ कहा, वो कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है अरुणिमा? उस शख्स को ये तक याद नहीं कि उसका नाम क्या है, उसे अपने परिवार के सदस्य भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल गया है। अगर उसे कुछ याद है तो सिर्फ एक नाम की, कि उसकी अरुणिमा है और उसके दो बच्चे हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अरुणिमा, बस एक बार उसकी मदद कर दो। अरुणिमा गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, ताईजी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, उस आदमी से मिलने पर मुझे मजबूर मत कीजिए। ताईजी समझ गई थी कि अरुणिमा कभी भी आस्तिक से मिलने के लिए राजी नहीं होगी। ताईजी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा दिल भी कभी इतना पत्थर दिल का हो सकता है। अरुणिमा ने भी अपने चेहरे पर एक सख्ती बरकरार रखते हुए कहा, आपके बेटे ने मुझे ऐसा बना दिया है। इसके आगे ताईजी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपने आंसू पोंछती हैं और भारी मन से अरुणिमा के घर से निकल जाती हैं। एक महीने बाद मिश्री फिर से स्कूल जाने लगी थी। हालांकि शारदा देवी की मौत का उसे अभी भी सदमा लगा था, लेकिन फिर भी उसे अपनी पढ़ाई तो पूरी करनी ही थी ना। दो तीन दिन घर पर रुकने के बाद अरुणिमा ने डांटकर उसे स्कूल भेज दिया था। अरुणिमा आज भी अपने उस एक कमरे के मकान में ही रहती है। उसके पास जो बचे हुए पैसे थे अब वो नहीं है। मिश्री के स्कॉलरशिप के जो पैसे मिले थे, अरुणिमा को ना चाहते हुए भी उन पैसों को घर के कामों में इस्तेमाल करना पड़ा था। अरुणिमा अब ज्यादा दिन घर पर नहीं रह सकती थी। उसकी भी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राशन खत्म हो रहा था और उसे कमरे का किराया भी देना था। सक्षम आया था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन अरुणिमा ने हाथ जोड़कर सक्षम से कह दिया था कि उनके बीच जो भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता है, उसे इसी तरीके से रहने दे। पैसों को बीच में लाकर वो इस रिश्ते को खराब ना करें। अरुणिमा के पास कुछ बचे हुए गहने थे जो उसने बेच दिए थे, जिससे बच्चों की दवाइयां और मिश्री के स्कूल की जरूरतें पूरी हो रही थी। ले देकर अब अरुणिमा के पास बस उसकी एक सोने की चूड़ी बची हुई थी, जिसे वो अभी अभी अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर रही थी। वो उस चूड़ी को कल बेचने वाली थी। बच्चे अभी छोटे थे, वो उन्हें इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई काम तो ढूंढना ही था ना। वो ऐसे घर पर बैठी रहेगी तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा।